हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवा अध्याय श्लोक संख्या 16 और 17। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरेन्द्रस्य ज्ञानञ्जनाशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं विश्वं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सूते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत कथाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद नवा अध्याय श्लोक संख्या 16। पितामह युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, न ह्यस्य कर्हि चित्राचन पुमान वेद विदित्सितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता मुहुयन्ति कवयोपिः। नह्यस्य कर्हि चित्राचन् पुमान् वेद विदित्सितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोपिः नह्यस्य कर्हि चित्राचन् पुमान् वेद विदित्सितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोपिः शब्दात् न ही अस्य न मतलब कभी नहीं ही यानी निश्चय ही अस्य यानी उसका कर ही चित कोई भी राजन हे राजन पुमान कोई वेद जानता है विदित्सितम योजना यत जो विजिज्ञासा जिज्ञासा युक्ता लगा हुआ मोहयन्ति कवय मोहयन्ति मतलब मोहग्रस्त हो जाते हैं कवय यानी बड़े बड़े विचारक अपि भी निश्चय ही अनुवाद हे राजन भगवान कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं लेकिन वे मोहित हो जाते हैं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि परम विशेषज्ञ यानी 12 अधिकारियों में से एक भीष्म के द्वारा विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के मोह का निषेध हो जाता है। भीष्म महाराज युधिष्ठिर को बताना चाह रहे हैं कि अनादिकाल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं समेत कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है तो भला हम उसके विषय में कैसे जान सकते हैं इसके विषय में जिज्ञासा करना व्यर्थ है। यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी भगवान की योजना को ठीक से निश्चित नहीं कर पाते। अतएव सर्वोत्तम नीति की यह है कि बिना तर्क के भगवान के आदेशों का पालन किया जाए। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी, अतएव पुण्य की विजय स्थापित करने के लिए उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। भीष्म देव धर्म की विजय देखकर निश्चित ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासनारूढ़ देखकर प्रसन्न थे। यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे, भीष्म जैसा महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सका, क्योंकि भगवान यह दिखाना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता। चाहे कोई कुछ भी करना चाहे, भीष्मदेव भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि भगवान यह दिखलाना चाह रहे थे कि भीष्म जैसा योद्धा भी विपक्ष से लड़ने पर जीत नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालम् पङ्गुं लङ्घयति गिरम् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। अत्यंत ही सुंदर भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को ये बता रहे हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को मोह हो गया है कि ये सब हत्याओं का कारण मैं हूँ, मेरे कारण ये नर संहार हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा दुखी है। भगवान के समझाने पर भी जब वो समझे नहीं, तब उनको भीष्म पितामह के पास लाया गया और भीष्म पितामह ने उन्हें पहले ही समझाया कि सर्वं कालं कृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यत्वशीलोको वायुरिव खनावली। सर्वं कालं मितं मन्ये, मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण है जिसके वशीभूत होकर व्यक्ति लोक लोक में मारा फिरता रहता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर उधर ले जाए जाते हैं, तुम्हारा कोई इसमें दोष नहीं है बेटा, ये सब काल का किया धरा है। वरना अब इतने सारे जब एक साथ मिले हों, कौन कौन, यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणि वृकोदर कृष्णो स्त्रीगांडिवं चापम सुहृत् कृष्णस्ततो विपत्। यत्र धर्म सुतो राजा, साक्षात धर्म का बेटा जहाँ पर राजा हो, गदा पाणि वृकोदर जहाँ पर बल इतना ज्यादा हो, साक्षात वृकोदर भीम के विषय में क्या कहा जाए, उनका कितना बल था जब वो बकासुर राक्षस को मारने के लिए गए थे। जब वो एक चक्रा नगरी में जब रुके थे तो एक राक्षस को मारने के लिए गए थे, वो पूरा चक्रा लेकर गए थे खाने, तो उसके अंदर बहुत सारे खाद्य पदार्थ थे और वो जब लेके जा रहे थे तो रास्ते में उसको भूख लग रही थी तो खाए जा रहे हैं तो वहां पर जब पहुंचे तो बस थोड़ा सा ही रह गया था खाना। तब बकासुर देख के इतना ज्यादा उसको गुस्सा आने लगा, इतना बड़ा राक्षस था और उसको इतना गुस्से से देख रहा है भीम को। वो फिर भी भीम है ना, ककड़ी खा रहा है और थोड़ा थोड़ा जो भी सैलेड जो जो चीजें फ्रूट्स वगैरह बची थी ना वो उसके सामने सामने खा रहा है। बकासुर बार बार उसको ऐसे धक्का मार के उसको है ना मारने की कोशिश करता है, भीम उससे लड़ाई भी नहीं करता, मतलब उसके साथ युद्ध भी नहीं करता, उसको गुस्सा भी, जैसे एक बच्चा नहीं होता है उसके पास कभी कभी कोई छोटे छोटे कीड़ा आता है फिर ऐसे किसी हाथ से ऐसे करके हटा देता है, तो उस तरह से भीम उस इतने बड़े राक्षस को ऐसे हटा रहा है हाथ से, मतलब ना उसका प्रतिहार कर रहा है ना उसको, मतलब एक राक्षस के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है कि तुम्हारा पूरा भोजन खा गया और अब जब तुम उसके साथ युद्ध करने आ रहे हो तो वो उसको कोई कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो आराम से खा रहा है, मतलब उसको ये कह रहा है कि देखो अभी मैं खा रहा हूँ मुझे डिस्टर्ब मत करो। बार बार उसको ऐसे हाथ से कभी लात से थोड़ा थोड़ा उधर उधर कर, मतलब कहने का अर्थ ये है कि इतना ज्यादा बल जिस भीम के पास हो और जिनके पास इतनी पुण्यों की पूंजी हो, कहते हैं जहां पर पुण्य होते हैं वहां पर यदि दुखों का पहाड़ होता है ना वो भी टल जाता है, लेकिन साक्षात धर्म मूर्तिमान पुण्य है युधिष्ठिर महाराज और इतना बल है भीम के हाथों में। उसके अतिरिक्त कृष्ण स्त्रीगांडीव, साक्षात कृष्ण यानी अर्जुन का एक नाम है कृष्ण, वो गांडीव उठाते, मतलब शस्त्र बल उनके पास इतना, उसके पास इतने शस्त्र थे अर्जुन के पास जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। स्वर्ग से शस्त्र लेकर आए थे, पाशुपत अस्त्र उनको शिव जी ने दिए थे, द्रोणाचार्य ने उनको इतने सारे शस्त्र दिए थे, इतना शस्त्र बल था। और उसके बाद सुहृत कृष्ण, सबसे बड़ी बात कि साक्षात कृष्ण का बल, साक्षात कृष्ण जो कि सारे जगत के स्वामी हैं, पूरी प्रकृति जिनके इशारों पे चलती है वो उनकी सुहृत है, वो उनका कल्याण करने के लिए लगे बड़े हैं कि बस कैसे भी करके इनका कल्याण करना है। ततो विपत, वहां पर विपता, तो ये तो केवल काल के कारण है बेटा, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, तो क्या कृष्ण को भी काल के अधीन मानते हैं भीष्म पितामह? तब भीष्म पितामह कहते हैं, न नहीं, कभी नहीं, नहियस्य कर्हिचित् राजन। हे राजन, वो वास्तव में भीष्म पितामह जब युधिष्ठिर महाराज को राजा के स्वरूप में देखा ना, उनके साथ इतने सारे घोड़े वगैरह रथ थे और इतने सारे ब्राह्मण उनके साथ, तो उनको देखकर उनको इतनी संतुष्टि हो रही थी, भीष्म पितामह को इतना संतुष्ट हो रहे थे क्योंकि उनकी इच्छा पूरी हो गई और उनके मुख से निकल रहा है राजन। वो अपने पौत्र को कहते हैं राजन। आप ये नहीं सोचो, न हियश्च कर ही चित, ये जो कृष्ण है ना, जो तुम्हारा ममेरा भाई यहाँ पर बैठा हुआ है, ये मतलब भीष्म पितामह ऐसे उंगली करके कृष्ण को दिखा रहे हैं, हियश्च, ये जो कृष्ण है ना, ये राजन, ये कब क्या करना चाहता है वो कोई नहीं जान सकता। न हियश्च कर ही चित राजन पोमान वेद विदित्सितम, कोई भी उनकी योजना को समझ नहीं सकता, कोई भी उनके विषय में जान नहीं सकता, और यदि कोई जानने की जिज्ञासा करता है तो यद्वि जिज्ञासया युक्ता मोहयन्ति कवयोपि, यदि कोई उनके विषय में उनकी प्लानिंग्स को उनकी योजनाओं को मोहयन्ति कवयोपि, बड़े बड़े कवि बड़े बड़े विद्वान भी जब भगवान की योजनाओं को समझने की भगवान जिज्ञासा करते हैं, भगवान को समझने की जिज्ञासा करते हैं, तो वो मोहित हो जाते हैं क्योंकि उनके कार्य उनकी लीलाएं इतनी मोहित करने वाली हैं कि कोई भी उनको नहीं समझ सकता। न यस्य कर्हिचित् पोमान वेद विदित्सितम्, चाहे कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, इनकी योजनाओं को समझना असंभव है। जैसे भगवान ने सबसे पहले अश्वत्थामा के हृदय में बैठकर उसे ये प्रेरणा दी कि तुम ब्रह्मास्त्र चलाओ, अब अश्वत्थामा के हृदय में भी तो भगवान ही है, उनको प्रेरणा देने वाले भी तो भगवान ही है ना, तो उनको जाके प्रेरणा दी कि आप ब्रह्मास्त्र चलाओ, और स्वयं आकर उत्तरा के घर में प्रवेश कर लिया रक्षा करने के लिए। हैरत की बात है, जब तुम्हें रक्षा ही करनी थी तो ब्रह्मा अस्त्र चलाने की उसे प्रेरणा क्यों थी हृदय में बैठकर। और इसके अतिरिक्त स्वयं भगवान जो है वो दुशासन को प्रेरित कर रहे हैं कि जाओ तुम द्रौपदी का वस्त्र हरण करो। द्रौपदी से कितना प्रेम करते हैं कृष्ण, सखी कहते हैं, और दुशासन को कह रहे हैं कि हाँ, दुशासन के हृदय में भी तो भगवान बैठे हुए हैं ना, यदि भगवान खुद अंदर बैठकर आज्ञा नहीं देते तो कोई भी पापी पाप नहीं कर सकता, क्योंकि हृदय के अंदर भगवान बैठे हुए हैं, वो अनुमति देते हैं, वो देख रहे होते हैं। उपदृष्टा अनुमंता च, तो वो उपदृष्टा है, वो देख रहे होते हैं, अनुमति अगर वो ना दे तो दुशासन की मजाल नहीं है कि वो वस्त्र पर हाथ रखे द्रौपदी के, लेकिन वहां से वो दुशासन को प्रेरित कर रहे हैं। और उधर साड़ी जब वो खींच रहा है तो इधर से वो स्वयं साड़ी का रूप धारण करके उस साड़ी को बढ़ा रहे हैं, वो द्रौपदी की लाज बचा रहे हैं और साथ साथ में दुशासन से अपराध भी करवा रहे हैं। इसलिए भीष्म पितामह कहते हैं, न हियस्य कर्हिचित् राजन् पुमान् वेद विदित्सितम्, क्यों तुम जैसे भक्तों को विपत्ति में रखे हुए हैं, कि क्यों बार बार आपके जीवन में विपत्ति आती थी, अब उनके मनों के भाव को कोई नहीं जान सकता, विपत्ति में डाल भी रहे हैं और फौरन से सहारा भी दे रहे हैं, उनकी लीला को कोई जान ही नहीं सकता है। अभी तुमको यहाँ पर यही कहकर आए होंगे ना कि भीष्म बहुत ज्ञानी है, चलकर उनसे हम पूछते हैं, तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हो, भीष्म पितामह को तो जानते हो ना, वो तो कितना ज्ञानी है, तो चलो उनसे जाके सुनते हैं। स्वयं सर्वज्ञ हैं, समस्त वेदों की रचयिता हैं, वेदों को जानने वाले हैं और वेदों का मकसद है, और फिर कह रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है और मैं समझा भी नहीं पा रहा हूँ, चलो भीष्म पिता। तो मतलब इसका ये कहने का कि भीष्म पितामह कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब इन्हीं का किया धरा है, वो स्वयं ही तुमको विपत्ति देते हैं और स्वयं ही उस विपत्ति से तुम्हारी रक्षा भी करते हैं। चाहे कितनी ही विपत्तियां आई हैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। वास्तव में कभी कभी लोग कहते हैं कि पांडव तो भगवान के इतने महान भक्त हैं, फिर भी विपत्ति ही विपत्ति उनके जीवन में सदैव आई। सारे जीवन उनकी उन्होंने दुख भोगे, अब टोटल जोड़ के देखें तो क्या दुख भोगे बताओ उनको। द्रौपदी का अपमान होने जा रहा था, हुआ अपमान? क्या पांडव लाक्ष भवन में जलकर मर गए थे? क्या भीम ने जब जहर खाया था तो उनकी मृत्यु हो गई थी? क्या वनवास में उनको इतने सारे कष्ट हुए थे तो क्या उन कष्टों के कारण, उनको उन विपत्ताओं के कारण कभी उनको कोई संकट आया? कष्ट आते थे, चुटकी बजाते बजाते खत्म हो जाते थे। द्रौपदी का अपहरण हुआ था एक बार वनवास में, जयद्रथ ने किया था, लेकिन जैसे शाम होने से पहले पहले वो स्वयं ही घर आ गई। जिस दिन द्रौपदी का अपहरण हुआ था उस दिन युधिष्ठिर महाराज इतने व्याकुल हो गए थे, इतने दुखी हो गए थे, इतना रो रहे थे, और वन में अचानक मार्कंडेय ऋषि से उनका मिलन हुआ और मार्कंडेय ऋषि से उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, हमारे जैसा दुखी कोई इतिहास में कभी हुआ है? जितने दुख हमें विधाता ने दिए हैं, क्या इतिहास में कभी किसी को इतने दुख मिले हैं? तब मार्कंडेय ऋषि ने हंसते हुए कहा, आपके ऊपर क्या दुख आए बताओ, कौन से दुख आए आपके पास? आपको तो हर एक स्थिति में कृष्ण ने रक्षा की। आपकी पत्नी का अपहरण हुआ लेकिन शाम होते होते वो वापस आ गई। इतिहास में हम सब जानते हैं कि श्री राम की पत्नी मैया सीता को रावण चोरी करके लेकर गया था और पता भी नहीं चल रहा था श्री राम को कि वो कहाँ है। बन बन में मारे मारे फिर रहे थे और तब उन्होंने बहुत ही मुश्किल से वानरों की सेना जुटाई और फिर सेतु बंद बनाया, समुद्र के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा पुल बनाया। उसके बाद इतना बड़ा घमासान युद्ध हुआ, रावण के इतने सारे बलवान भाई थे, सबके साथ युद्ध करने के बाद उन्हें उनकी पत्नी मिली। और आपकी पत्नी सुबह को गई शाम को वापस लौट आई, फिर भी तुम ये सोच रहे हो कि तुम बहुत दुखी हो। आज श्री राम की, वास्तव में श्री राम की जीवन को अगर हम युधिष्ठिर महाराज से मैच करें तो बहुत सारी चीजें सेम है, लेकिन फिर भी श्री राम के जीवन का दुख बहुत ज्यादा भारी दुख है। अब श्री राम जो है उनको भी उनकी पोतली माता ने वनवास दे दिया था, लेकिन मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं आपसे एक साल ज्यादा, आपको तो 13 साल का वनवास मिला, उन्हें तो 14 साल का वनवास मिला था। उनके भी पिता की हत्या मृत्यु हो गई थी और आपके भी पिता की मृत्यु हो गई, उन्हें भी राज्य नहीं मिला, आपको भी राज्य नहीं मिला, लेकिन आपके तो पग पग पर एक एक विपत्ति में भगवान ने आपका सदैव साथ दिया, क्या भोगा आपने? मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि पांडवों के जीवन में दुख तो आते थे परंतु भगवान कृष्ण की कृपा से तुरंत विदा हो जाते थे। ऐसा नहीं था कि विदा होने के बाद वापस दुख नहीं आते थे, दुख वापस आते थे, निरंतर चलते रहते थे। और इन विपत्तियों के कारण जो आनंद उनको प्राप्त हो रहा था उसी के कारण तो माता कुंती कहती है, विपतः संतुतः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। मैं सोचती हूँ कि मुझे ये विपत्तियां जो हैं वो शाश्वत रूप में मिलती रहे, वो सोचती थी कुंती महारानी, कहती थी मैं चाहती हूँ कि ये जो सारी विपत्तियां आज तक हमारे जीवन में आती रही हैं वो कंटिन्यूअस चलती रहे, द्रौपदी का रोज 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 जी रहा हो, निरंतर चलता रहे, और इसी तरह से आप वस्त्र अवतार लेते हुए आए तो फिर क्या दिक्कत है। आनंद ही आनंद है जब कृष्ण साथ है। वो कहती है रोज 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 लाक्षाग्रह जले और मेरे पांचों बच्चों को तुम संभालते रहो। यूं ही हम वनवास में भटकते रहे और हर एक पुकार पर तुम फौरन आके हमारी सहायता करो। वास्तव में जब वो वनवास में गए थे तो वनवास से भी आए थे तो इतने तेजस्वी होकर आए थे क्योंकि वहां पर भी कृष्ण ने सदैव उनका साथ दिया था, उनको बहुत सारे ऋषि मुनियों का संग मिला था। और 13 साल बीतने के बाद जब 13 अज्ञात साल भी उनका कंप्लीट हो गया तो सब उनसे मिलने आए थे। कृष्ण आए थे, बलराम जी आए थे, सात्यकी आए थे और वहीं पर अभिमन्यु का विवाह हुआ था उत्तरा के साथ। तब मीटिंग बिठाई थी उन्होंने कि अब क्या करना चाहिए। तो बलराम ने कहा कि अब क्योंकि 13 साल कंप्लीट हो गए हैं तो बलराम कहने लगे कि अब आप में से कोई एक व्यक्ति जाए और हस्तिनापुर और उनसे जाकर राज्य मांग ले। तब सात्यकी खड़े हो गए, बोला मांगे, हम क्षत्रिय हैं और जाके उनसे भीख मांगे? हम उनको पता है 13 साल हो गए कंप्लीट तो फिर उनको खुद जाके हमें आके राज्य देना चाहिए, लेकिन फिर वो स्वयं नहीं आ रहे हैं और यदि आप उनके संबंधी हैं तो जाइए और जाकर बोल दीजिए उन्हें कि उनके 13 साल कंप्लीट हो गए हैं, अब उनका राज्य उन्हें वापस दे दीजिए। एक तो उन्होंने इतना हमारे साथ छल किया, उसके बावजूद भी इन्होंने पांडवों ने अपने 13 साल का वनवास भोगा और उसके बावजूद भी आप चाहते हो कि जाकर उनके सामने भीख मांगे। वो कितनी हैरत की बात है, हमें ये समझ में नहीं आता बलदाव, क्यों आप हमेशा दुर्योधन की साइड लेते रहते हो? डांट कर बोले कि कोई भीख नहीं मांगनी हमें उनसे, सीधा जाके ये बोलना है राज्य दो, यदि नहीं दे रहे हो तो युद्ध करो। वैसे बलराम जी बहुत ही मधुर स्वभाव के थे, वो सदैव बोलते थे कि नहीं युद्ध नहीं होना चाहिए, खून खराबा नहीं होना चाहिए, सारे अपने ही हैं तो ये सब युद्ध नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं कि जो बहुत कुशल हो, बोलने में बहुत ज्यादा चतुर हो, वो जाके उनको समझाए कि देखो अब 13 साल कंप्लीट हो गए हैं तो आप पांडवों को उनका राज दे दीजिए। और अगर ये कृष्ण जाएगा ना, वास्तव में हम सब में वाक चतुरता जो है ना, बोलने का जो चतुरता है, वो एक्सपर्ट जो है ना, वो सिर्फ कृष्ण में है। वो बहुत ज्यादा बोल सकता है अच्छे तरीके से, हर किसी को अपनी बात मनवा सकता है। तो ऐसा करते हैं, अगर कृष्ण युधिष्ठिर का दूत बनकर जाएगा तो वो सब मान जाएंगे। कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर का दूत बनकर जाने के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन वहां पर किसी को मनवाया नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी फिलॉसफी दी कि भाई देखो वो होकर आए हैं, अब युद्ध नहीं चाहते हैं, आप किसी तरह से जो भी आपके समझ में आता है कुछ करो कि युद्ध नहीं होना चाहिए। आप 5 गांव दे दो उनको, थोड़ी भूमि सबको मिल जाएगी तो वो आराम से रह जाएंगे, आपका हस्तिनापुर सुरक्षित रहेगा। समझा तो रहे हैं परंतु हृदय में बैठकर समझने नहीं दे रहे हैं। इसे भीष्म पितामह कहते हैं, यद्विजि क्या सयायुक्ता मोहयन्ति कवयोपि। बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े विद्वान भी भगवान की इन लीलाओं को समझ नहीं पाते। और जानते हो ये सब लीला कृष्ण क्यों करते हैं? ये सब लीलाएं भगवान अपने भक्तों को ये बताने के लिए करते हैं कि देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। अपने भक्तों को स्वयं विपत्ति देते हैं और साथ साथ में उनकी रक्षा भी करते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो संसार मैं कितना प्रेम करता हूँ अपने भक्तों को। विपदहारी कृष्ण के जब कोई शरण लेता है तो वो विपत्त में भी कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ता, और जब कृष्ण साथ होता है तो विपत्ति भी संपत्ति लगने लगती है। या जब कृष्ण का दर्शन होता है तब कभी भाव दर्शन नहीं होता, दुख तब दुख लगने नहीं लगता जब कृष्ण साथ होता है। और यहाँ तक लिखा गया है कि जब युद्ध होने वाला था तब बलराम ने कहा कि देखो कृष्ण, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ संबंधियों में हो रहा है, सगे संबंधी हैं, तो हम दोनों को भाग नहीं लेना चाहिए, हमको इस युद्ध से अलग ही रहना चाहिए। तो कृष्ण ने कहा हाँ जाओ, आप तो सही बोल रहे हो, युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? तब बलराम कहने लगे कि ऐसा करते हैं, युद्ध जब नक्की हो जाएगा ना, इस दिन युद्ध है, तो फिर युद्ध से 4-5 दिन पहले ही हम लोग क्या करेंगे, तीर्थ यात्रा पे चले जाएंगे। और वहां पर चले जाएंगे तो सबको पता है कि ये तो तीर्थ यात्रा पे गया, तो फिर युद्ध में हम लोग भाग नहीं लेंगे, उसकी वजह से हम बच जाएंगे। कृष्ण ने बोला आप ठीक कह रहे हैं दाऊ, आप तीर्थ यात्रा पे चले जाना, लेकिन अर्जुन युद्ध करेगा तो मैं कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ सकता। भले आप बोलते हो कि मैं युद्ध में भाग ना दूं, तो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन रहूंगा मैं अर्जुन के साथ, अर्जुन को अकेला छोड़ के मैं नहीं जा सकता। आप भले यात्रा करो, लेकिन मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता, मैं उनके साथ ही रहूंगा। स्पष्ट कह दिया दाव को कि मैं अपने भक्तों को विपत्ति में, संकट में छोड़कर किसी की बात नहीं मान सकता, किसी के साथ नहीं जा सकता, मुझे यात्रा नहीं करनी है, आपको करनी है तो आप बलि जाओ, वो साथ रहे तुम्हारे, यही इस बात का प्रमाण है कि अपराध नहीं हुआ। क्योंकि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय और भूत ध्रुवा नीतिर मतिर मम, कि वही धर्म है, वही सत्य है, वही विजय है, वही श्री है, जहाँ पर गांडीव धनुषधारी अर्जुन और उनके सारथी भगवान है। तो बेटा तुम लोगों से कोई अपराध नहीं हुआ है, तुम्हारा कोई कुसूर नहीं है, जो कुछ किया धरा इस चक्रधारी कृष्ण की लीला है, और ये जो लीला करते हैं वो कोई नहीं समझ सकता है, इसलिए समझने का प्रयास मत करो। हमें क्या करना है, जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि भीष्म महाराज युधिष्ठिर को बताना चाह रहे थे कि अनादिकाल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवी देवता समेत कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया। भगवान को समझ पाना कठिन नहीं है, असंभव है। जब बड़े बड़े देवता शिव और ब्रह्मा भी भगवान को नहीं समझ सकते, भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते, तो भला हम उसके विषय में कैसे जान सकते हैं? इसके विषय में जिज्ञासा करना ही व्यर्थ है, ये सोचना ही व्यर्थ है कि भगवान ने ऐसी प्लानिंग क्यों की, इसके बाद भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान जो करते हैं वो केवल वही समझते हैं, यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी भगवान की योजनाओं को ठीक से निश्चित नहीं कर पाती। अतएव सर्वोत्तम नीति ये है कि बिना किसी तर्क के भगवान के आदेशों का पालन किया जाए, बस जैसा वो कहते हैं ऐसा कर लेना चाहिए, क्यों क्या कैसे ये नहीं, बस क्या मेरे लिए क्या आदेश है, मैं क्या करूं, तुम जो कर रहे हो उसे न समझने का मेरे अंदर सामर्थ्य है न बुद्धि है, बस कृष्ण बताओ हाउ डू आई यूज नाउ एज इट इज इन योर सर्विस एंड प्लेजर लॉर्ड, मुझे ये बताओ कि इस वर्तमान समय में मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कैसे कार्य करूं, मैं केवल आपको प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाह रहा हूं, जो कुछ भी तुमने दिया है प्रेजेंट मोमेंट में उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी योजना है जो कुछ मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, जो मुझे अनऑस्पिशियस लग रहा है, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी क्योंकि आपकी योजना के कारण है, तो अवश्य उसमें मेरा हित ही होगा, उस सब के लिए थैंक यू जो तुमने मुझे दिया है, उस सब के लिए थैंक यू जो तुमने मुझे नहीं दिया है, उस सब के लिए थैंक यू जो तुमने मुझे दिया था पर वापस ले लिया, सब मेरे ही हित के लिए करते हो तुम, अब मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कैसे कार्य करूं। वास्तविक भक्त केवल इस तरह सोचता है। और आगे भीष्म पितामह कहते हैं तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभ यस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभु तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो राजा तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभु तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ नाथ पाहि प्रजा प्रभु तस्मादिदं दैवतन्त्रं तस्मात् मतलब अतैव इदं मतलब यः दैवतन्त्रं भाग्य का वशीकरण व्यवस्य भरतर्षभ निश्चित ही रूप में भरतर्षभ हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ तस्य अनुविहितो नाथा तस्य इसके द्वारा अनुविहित यानी इच्छित अनाथा असहाय नाथ पाही प्रजा प्रभु नाथ हे स्वामी पाही अर्थात रक्षा करो प्रजा जनता की प्रभु हे प्रभु। अनुवाद पितामह कहते हैं अतएव हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर मैं मानता हूँ कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त शासनाध्यक्ष हो अतएव हे प्रभु अब तुम्हें इस अनाथ प्रजा का पालन करना चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कहावत है कि गृह स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देकर पुत्र वधु को शिक्षा देती है। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। भक्त को भगवान से कुछ भी नहीं सीखना होता क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त को अंतर से शिक्षा देते हैं। अतएव जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश में हुआ है तो यह कम बुद्धिमान मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए होता है। अतएव भक्ति का धर्म है कि वह भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को उन्मुक्त होकर और आशीर्वाद मानकर सह ले। भीष्म देव ने पांडवों को सलाह दी है कि वे बिना हिचक के शासन भार स्वीकार करें। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बेचारी प्रजा असुरक्षित थी और वह महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान का शुद्ध भक्त सारी विपत्तियों को भगवान का अनुग्रह मानता है क्योंकि भगवान पूर्ण ब्रह्म है। अतएव भक्त तथा भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अत्यंत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जब भगवान अपने भक्त को कोई विपत्ति देता है कोई संकट आता है उसके जीवन में कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि हम इस भक्त के साथ ऐसा क्यों हुआ तो ये केवल भगवान की योजना होती है। जिस प्रकार एक माता को यदि अपनी बहू को समझाना होता है तो डायरेक्ट से बहू को नहीं बोलती है कि देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो पराए घर से आई है ना उसको बुरा लग सकता है। फिर वो क्या करती है अपनी बेटी को बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है ऐसा नहीं करना चाहिए इतना सारा दूध जाया कर रही हो तेल इतना सारा डाल रही हो आपको अक्कल नहीं है। अपनी बेटी को समझा रही होती है हालांकि बेटी को बुरा नहीं लगता वो बेटी की अगर उसका अगर कुसूर नहीं भी होता है फिर भी माँ की बात को अवॉइड करती है, लेकिन वो बेटी के द्वारा से बहू को शिक्षा देना चाहती है। उसी तरह भगवान भी क्योंकि अपने भक्तों से बहुत बहुत प्यार करते हैं, भक्तों को संकट में डालकर भी वो कभी भी संकट से उनको उनकी हानि नहीं करवा सकते। भक्त जो है वो भगवान की सुरक्षा में होता है। भगवान ने साफ साफ घोषणा करवा दी है, नमे भक्ता प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानीह, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता है। तो अगर कभी कभी भक्तों के जीवन में कोई विपत्ता आती है, कोई दुख आता है, कोई संकट आता है, तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वास्तव में तो वो कम बुद्धिमान मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए होता है। अतएव भक्त का धर्म क्या है कि वह भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को उन्नत होकर और आशीर्वाद मानकर सह ले। ये सोचे कि भगवान मुझे यूज कर रहे हैं, ये तो कितनी खुशी की बात है कि मैं भगवान की किसी लीला में सहायता कर रहा हूँ। तो भगवान जब भक्तों के साथ कोई लीला कर रहे होते हैं वो साधारण प्राणियों को सिखाने के लिए करते हैं। इसलिए यहाँ भीष्म पितामह कह रहे हैं तस्मादिदं दैवतंत्रम, मैं मानता हूँ कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो सब भगवान की योजना से हुआ है। दैवतंत्रम, ये सब कुछ भाग्य का वशीकरण है, जो भाग विदाता ने ये सब अपनी मर्जी से किया है। तो व्यवस्य भरत, ये सारी जो योजना की है वो सब भगवान की अपनी योजना है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तस्यानु विहितो नाथा। इसलिए तस्यानु, यानु मतलब कृष्ण को कह रहे हैं कि अब क्या करो, आप उसी कृष्ण का अनुविहितो यानी उसकी इच्छा के अनुसार जैसा वो चाहता है उसके अनुसार उसका अनुगामी हो जाओ और उसके आज्ञा के जो जो वो आज्ञा दे रहा है भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत्य योजनाओं को स्वीकार करो और उसका पालन करो, जैसा जैसा भगवान चाहते हैं आप उनकी सहायता करो, उनकी योजना के अनुसार कार्य करो। वो चाहते हैं कि तुम्हें राज्य करना है, इसीलिए तो इतना बड़ा युद्ध हुआ। इतना बड़ा युद्ध होने का कारण यही था कि भगवान चाहते थे युधिष्ठिर राजा बने, और अब जब युधिष्ठिर राजा बन गया है तो यार राज्य नहीं करना चाह रहा। तो फिर भीष्म पितामह समझा रहे हैं तस्यानुविहितो नाथा, अब जो इतना बड़ा युद्ध हुआ है उसके कारण ये जो जितनी भी प्रजा है वो अनाथ हो गई है। तो फिर भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं नाथ, वास्तव में एक परपिता है और वो कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को नाथ, आप नाथ हो। वास्तव में नाथ का मतलब है कि आप ही वास्तविक अधिकारी हो, प्रजा को संभालने का अधिकार है आपका, कोई परंपरा के स्वामी हो। आपको अभी एक ही कार्य करना है कि जो प्रजा इतनी दुखी है, इतने सारे युद्ध हुए हैं, हत्या हुई है, मृत्यु हुई है, उसके कारण प्रजा का क्या हाल है, तो तुम्हें क्या करना है, पाही प्रजा प्रभु, कि अब तुम्हें उस प्रजा की सुरक्षा करनी है। आप समर्थ हो, प्रभु कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि आप समर्थ हो, आप प्रजा का पालन करने में पूरी तरह से कुशल हो, तो आप क्या करो, कृष्ण के आधीन रहकर शासन करो। तस्यानुविहितो नाथ, जैसे वो आदेश दे रहे हैं वैसे आप करो। अभी आपको दुख करने की जरूरत नहीं है, तुम इतना ज्यादा दुख कर क्यों रहे हो, जो कुछ हुआ है कृष्ण की मर्जी से हुआ है, कृष्ण की योजना से हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो। अब तुम ये सोचो कि सारा जगत काल के अधीन है और कृष्ण के आदेश अनुसार अनाथ प्रजा को सुख दो, आपको अब यही कार्य करना है। तो मान लीजिए युधिष्ठिर महाराज पूछे कि चलो ठीक है सब कुछ काल के अधीन ही हुआ है, तो आप मुझे ये क्यों बोल रहे हो कि जैसा तस्यानुविहितो, कि जैसा कृष्ण कह रहे हैं उसके आदेशों के अनुसार कार्य करो। मतलब कृष्ण पर आप इतना जोर क्यों दे रहे हो, कृष्ण तो इस तरह से क्यों बोल रहे हो कि कृष्ण जैसे योजना बनाते हैं आप उनके अनुसार ही कार्य करो। तो इसका उत्तर भीष्म पितामह कल हमें श्लोक नंबर 18 में देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी साधना और सेवा को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।